हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज हम सभी लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं श्री चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव तिथि इस के उपलक्ष्य में इस महोत्सव को मनाने के लिए। इस्कॉन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ सामान्य रूप से हरे कृष्ण आंदोलन के रूप से जाना जाता है, और भक्तों को जो इस हरे कृष्ण आंदोलन में के जो भक्तगण हैं उनको हरे कृष्ण भक्त के नाम से जाना जाता है। तो ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है, आप जब भी इस्कॉन मंदिर में आएंगे तो ये हरे कृष्ण महामंत्र मुख्य रूप से आपको सुनने को मिलेगा। आप भक्तों को देखेंगे तो जपमाला यही वो हरे कृष्ण महामंत्र करते हुए आपको दिखाई देंगे। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र को जो वर्तमान समय में पूरे विश्व में प्रसारित किए वो हैं श्री चैतन्य महाप्रभु। आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व श्री चैतन्य महाप्रभु बंगाल में, अभी पश्चिम बंगाल वेस्ट बंगाल जो राज्य है उसमें नवदीप धाम, नवदीप डिस्ट्रिक्ट भी है, और वहाँ पर एक जगह है मायापुर, ये इको है, इसमें इको शुड बी इको कंपनी, मायापुर धाम, वहां पर श्री चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य हुआ। कौन है ये चैतन्य महाप्रभु? तो श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। तो बहुत से लोग हैं जो ऐसा बोलते हैं कि ये भगवान के अवतार हैं। भारत में विशेष रूप से बहुत प्रचलित हैं इस प्रकार से, आए दिन बहुत लोग अपने को अवतार बताते हैं। तो क्या ये चैतन्य महाप्रभु भी ऐसे ही एक उद्घोषित अवतार हैं? कई लोगों ने मिलकर के उनको अवतार घोषित कर दिया, या उन्होंने अपने को अवतार घोषित कर दिया हो, क्या ऐसा है? तो भगवान के अवतार तो होते हैं, भगवान तो आते हैं इस जगत में। भगवान भगवद्गीता में बताते हैं, यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम्। भगवान तो आते हैं बार बार, लेकिन ऐसे भी है कि बहुत से लोग स्पष्ट रूप से सामान्य व्यक्ति हैं लेकिन वे अपने को भगवान उद्घोषित करते हैं, या उनके अनुयायी उनको भगवान कहते हैं। तो कैसे समझे कि चैतन्य महाप्रभु वास्तव में श्री कृष्ण हैं? तो कोई भी अवतार को जानने के लिए तरीका है कि वो जो भगवान अवतार के रूप में आते हैं तो उनका वर्णन शास्त्रों में होता है। शास्त्र, वैदिक शास्त्र सामान्य व्यक्तियों के द्वारा लिखी हुई कोई ग्रंथ नहीं है, इसलिए शास्त्रों को अपौरुषेय कहा गया है, यानी किसी पुरुष साधारण एक व्यक्ति की रचना वो नहीं है। वो साक्षात जो सभी इस पूरी सृष्टि के सृष्टि करता है, पालन करता है, संहार करता है, यानी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, उनके द्वारा ये दिया गया ज्ञान है। इसलिए किसी सामान्य पुरुष के द्वारा दिया गया ज्ञान नहीं है। तो शास्त्रों में वर्णन होना चाहिए अवतारों का, उनके क्रियाकलापों का, उनके गुणों का। इस सब के माध्यम से जो आचार्य गण हैं, जो वैदिक संस्कृति को हम तक पहुंचाते हैं, और जो अपने पूरे जीवन में इन शास्त्रों का पूरी तरह से अवलंबन करते हैं, ऐसे आचार्य के द्वारा ऐसे अवतारों को स्थापित किया जाता है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु के विषय में इसी प्रकार से बहुत जगह पर हमारे वैदिक शास्त्रों में वर्णन है। श्री चैतन्य महाप्रभु जो अवतार हैं वो कई तरीके से अन्य अवतारों से भिन्न भी हैं। जब भगवान श्री कृष्ण स्वयं आए तो उन्होंने स्पष्ट रूप से घोषणा की कि वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। भगवद गीता में भगवान ने अर्जुन को कहा, अहम सर्वस्य प्रभव मत्त सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। सभी चीजों का आदि उद्गम मैं श्री कृष्ण हूं। और इस प्रकार से स्पष्ट रूप से उन्होंने घोषणा की। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में जब भगवान कृष्ण आते हैं तो इस प्रकार से स्वयं उद्घोषणा नहीं करते हैं। वो छिन्न अवतार के रूप में जाने जाते हैं, यानी छुपे हुए अवतार के रूप में शास्त्रों के द्वारा। इसलिए भगवान को त्रियुगी भी कहा गया है। तीन युगों में सतयुग त्रेता द्वापर युग में भगवान स्पष्ट रूप से अपने को प्रस्तुत करते हैं हम सबके सम्मुख, लेकिन कलयुग में भगवान इस प्रकार से अपने को प्रस्तुत नहीं करते हैं। इसलिए उनको श्रीमद् भागवतम के अंदर छिन्न अवतार कहा गया है। लेकिन बहुत सारे इस प्रकार से प्रमाण हैं, जैसे जब भगवान श्री कृष्ण अवतरित हुए तो जब उनकी कुंडली बनाई गई तो उसमें बताया गया नंद महाराज को कि ये जो आपके पुत्र हैं पहले ये इस रंग में आते हैं, श्वेत वर्ण में आते हैं, श्याम, और फिर एक है पीत वर्ण। तो अन्य युगों में बाकी सभी जो उनकी देह की कांति होती है उसमें वो सभी अलग अलग अवतार के रूप में आ चुके हैं, लेकिन पीत वर्ण के रूप में कलयुग से पहले किसी अन्य अवतार में नहीं आए। तो गौरा चैतन्य महाप्रभु का जो दिव्य शरीर की जो कांति थी वो एक पिघले हुए सोने के समान थी, इसलिए उनको गौरा कहते हैं। तो ये पीत वर्ण, तो इस अवतार का इस प्रकार से उल्लेख शास्त्रों में यहां पर हुआ। और फिर श्रीमद् भागवतम में जहां पर सभी अवतारों का वर्णन हो रहा है, कलयुग में भगवान किस रूप में आएंगे वहां पर यह वर्णन हो रहा है, चल रहा है, तो वहां पर बताया गया है कृष्ण वर्णम तिशा कृष्णम संगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधशः। अर्थात कि ये जो अवतार होंगे कलयुग में वो कृष्ण वर्णम, वो हमेशा कृष्ण 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 ये बोलेंगे, तुषा कृष्णम, लेकिन उनके जो शरीर की कांति होगी वो श्याम वर्ण की नहीं होगी। यज्ञ संकीर्तन प्राय कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम संगोपांगास्त्र पार्षदम, और अपने पार्षदों के साथ हमेशा वो रहेंगे और लीलाएं करेंगे और संकीर्तन यज्ञ का उद्घाटन करेंगे। तो आप देखिए विशेष रूप से उनके क्रियाओं का उल्लेख है, उनके वर्ण की कांति का उल्लेख है, अन्यत्र इस प्रकार से उनके किस परिवार में किस को उनके माता पिता होंगे इसका वर्णन है। शची सुत महाभारत के अंदर अलग अलग जगह उल्लेख है, नारद पंचरात्र में उल्लेख है। तो इस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु को श्री कृष्ण हमें स्वीकार करना चाहिए क्योंकि वो शास्त्र का आदेश है, और इसी प्रकार से महान आचार्यों ने उनको स्वीकार किया है। इस कलयुग के अंदर जो युग धर्म है वो हरि नाम संकीर्तन होता है, ये शास्त्रों में अलग अलग जगह पर बताया गया। कृतयत ध्यायतो विष्णु, जो सतयुग है उसमें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की आराधना ध्यान योग से होती है। त्रेतायाम यज्ञ मखई, त्रेता युग में अलग अलग यज्ञ संस्कार करने से, यज्ञ करने से भगवान की आराधना होती है। द्वापर युग में मंदिर के अंदर अर्चा विग्रह की पूजा विधि के द्वारा भगवान की उपासना होती है। और कलौ तत् हरि कीर्तनात्, कली में हरि के कीर्तन के द्वारा भगवान को हम जानते हैं या भगवान की उपासना करते हैं। तो ये जो संकीर्तन आंदोलन अर्थात संकीर्तन अर्थात बहु मिलित्वा, बहुत से लोग मिलकर के वाद्य इत्यादि के साथ जब भगवान श्री हरि, भगवान विष्णु, कृष्ण इनके नामों का उच्चारण करते हैं, उसको संकीर्तन कहते हैं। चैतन्य महाप्रभु जब अवतरित हुए तो उस समय में एक भ्रांत धारणा पूरे हिंदू समाज में फैली हुई थी कि ये जो भगवान का नाम है या कोई भी मंत्र है उसको मन में बोलना है, बाहर नहीं उच्चारण करना है। तो ये शास्त्र में लिखा है मंत्र जो है वो सीक्रेट, उसको गोपनीय रखना चाहिए, ये शास्त्र में लिखा है। तो ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है उसको भी अज्ञानतावश हमारा हिंदू समाज ऐसा ही एक मंत्र मान करके उसको भी गोपनीय रखते थे, उसको बोलना नहीं है। लेकिन ये जो महामंत्र है ये अन्य वैदिक मंत्रों से पृथक है। शास्त्रों में उल्लेख है कि ये हरे कृष्ण महामंत्र के श्रवण कीर्तन में इस प्रकार की कोई भी पाबंदियां नहीं है, इसको उच्च स्वर में बोलना चाहिए, हर कोई व्यक्ति इसको बोल सकता है। अलग अलग वैदिक मंत्रों में कौन बोलेगा कौन नहीं बोलेगा, शुद्धि किसकी है उसके अनुसार वो मंत्र का उच्चारण कर पाएगा, ये सब बहुत सारे नियम हैं। लेकिन ये जो भगवान का नाम है ये हरे कृष्ण महामंत्र, इसमें कोई इस प्रकार का नियम नहीं है। जो वैदिक मंत्र होते हैं उनकी जो रचना होती है वो इस प्रकार से होती है, जिसका आशय ये होता है उसमें भगवान का नाम होता है, लेकिन साथ साथ इस प्रकार से कि नमः, हम आपके अपनी जो फॉल्स ईगो है, अपना जो मिथ्या अहंकार है, हम उसको आपको समर्पित कर रहे हैं, इस भावना को जागृत करते हुए इस प्रकार की रचना में वो मंत्र होते हैं। उसमें एक बीज मंत्र, बीज शब्द होता है इत्यादि, नमः अंत में होता है, भगवान का नाम बीच में होता है। लेकिन ये हरे कृष्ण महामंत्र ये भगवान का नाम है, हरे कृष्ण राम, ये तीन इसमें शब्द हैं। हरा वो भगवान की अंतरंगा शक्ति को संबोधित करता है और श्रीमती राधा रानी, और कृष्ण सर्व आकर्षक जो भगवान का गुण है इसकी वजह से ये कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान को कृष्ण नाम से जाना जाता है, और राम जो सभी रसों के आगार हैं, आनंद के स्रोत हैं, इसलिए उनको राम नाम से जानते हैं। तो इसलिए कृष्ण और राम ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को संबोधित करने वाले दिव्य ध्वनि हैं, और हरा भगवान की संपूर्ण जो शक्तियां हैं उनको संबोधित करने वाली ध्वनि है, आध्यात्मिक ध्वनि है। इसलिए ये एक विशेष मंत्र है, इसलिए इसको महामंत्र कहा गया है, और इसको उच्चारण करने में कोई किसी प्रकार का ये नियम नहीं है, इस प्रकार के नियम नहीं है कि किस समय में उच्चारित करना है, कौन उच्चारित कर पाएगा नहीं कर पाएगा। हाँ, नाम के अंदर शुद्ध नाम, नाम आभास, नाम अपराध, ये गणना है, लेकिन सामाजिक स्तर पर कोई ले सकता है कोई नहीं ले सकता है, या कोई समय जब ले सकते हैं नहीं ले सकते हैं, ऐसे कोई उसमें कठोर नियम भगवान नाम में नहीं है। तो जब चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए तो उस समय हिंदू समाज में इस प्रकार की अनेक भ्रांत धारणाएं थी, क्योंकि हमारी जो सनातन धर्म है, जो वैदिक संस्कृति है, वो चरमरा गई है, और ये आज की बात नहीं है, चैतन्य महाप्रभु जब आए तब भी चरमरा चुकी थी। इसलिए वो वैदिक संस्कृति के केवल बिगड़ा हुआ रूप रह गया था, इसलिए इस प्रकार की भ्रांत धारणाएं थी। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने आकर के हमें सभी को ये संकीर्तन आंदोलन सिखाया। तो उन्होंने बंगाल में अपने संगियों को लेकर के तेज स्वर में वही हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करने लगे, और उनका प्रभाव इतना अधिक था, जो भी उनके मुख से हरे कृष्ण महामंत्र सुनता था, अगर थोड़ी सी भी उसके अंदर कुछ पायटी है या कई बार नहीं भी है तो भी वो कृष्ण प्रेम से ओतप्रोत हो जाता था। जब तक कि कोई व्यक्ति बहुत अधिक भगवान के प्रति ईर्ष्यालु नहीं हो तो ये उसका प्रभाव होता था। तो इस प्रकार से बहुत से लोग बंगाल में श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ हरे कृष्ण करते हुए चलते थे। तो जो तथाकथित ब्राह्मण जो अपने को जाति से ब्राह्मण मानते थे तो उन लोगों ने विरोध करना शुरू किया कि ये निमाय, उनका पहले नाम बचपन में निमाय था, ये निमाय जो है हमारे सारे हिंदू धर्म का नाश कर रहा है, खुलेआम होकर के भगवान का नाम लेता है, ये कौन सा धर्म है, कहां सिखाया। और उन्होंने उस समय का एक मुसलमान शासक था बंगाल में, उस समय मुसलमानों का राज था, तो उसको जाकर उनको जाकर के उन्होंने शिकायत की कि ये जो निमाय है ये हमारे सारे हिंदू धर्म का नाश कर रहा है, इसको रोको। तो वो जो वहां का नवाब था तो उसने ऐलान किया, उसके अपने लोगों को भेजा और उन्होंने भक्तों से ये मृदंग जो बजा रहे थे, ये वाद्य हैं चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन के, करताल मृदंग, तो ये मृदंग तोड़ दिए और धमकी दी कि कोई भी ये जो है ये भगवान नाम, ये हरि नाम हरे कृष्ण ये नहीं लेगा। तो ये सब लोग वो सब मृदंग तोड़ करके वापस काजी के पास आए, हुसैन शाह के नवाब के पास आए, तो बताया कि ऐसे ऐसे हुआ, हम लोगों ने वो कहीं कीर्तन कर रहे थे, हमने उसको बंद करा दिया, उनके मृदंग तोड़ दिया, है ना। तो वो जो काजी था तो उसने पूछा क्या क्या हुआ, ठीक है तुमने उनका कीर्तन तो बंद कराया लेकिन तुम्हारे मुंह से अभी ये हरि नाम हरि 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 ये बंद नहीं हो रहा, तुम बोले जा रहे हो, इसका ये क्या हुआ। बोले हाँ पता नहीं ये क्या हुआ है, हमने तो उनको मजाक मजाक में ऐसे ही बोला, अरे हरिदास ऐसे मजाक किया, लेकिन पता नहीं उसके बाद क्या हो रहा है कि हमारी ये जीव जो है बंद ही नहीं होती है, भगवान का नाम इसमें आते जा रहा है, हम रोकना चाह रहे लेकिन रुकता नहीं है। तो जैसे एक छूत की बीमारी होती है तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु के साथ में जो आता था उसको ये भगवान का नाम उनके मुख से सुनने से उसके अंदर कृष्ण प्रेम आ जाता था और वो फिर चाहते हुए भी हरि नाम रोक नहीं सकता था, और फिर उनके संपर्क में कोई आता था तो उसका भी यही हाल हो जाता था। तो इस प्रकार से ये मुसलमान लोग थे लेकिन इनका ये हाल हो गया कि ये हरि नाम रोक नहीं पा रहे थे। तो इस प्रकार से जब वो ऐलान कर दिया कि अभी कोई संकीर्तन नहीं करेगा तो चैतन्य महाप्रभु ने अपने सभी साथियों को लिया और बोला कि आज हम सब कीर्तन करते करते वो नवाब के घर जाएंगे, देखते हैं वो कैसे कीर्तन को बंद करता है। तो इस प्रकार से हजारों की संख्या में लोग उनके साथ हो लिए और काजी जो है वो तो जब सब लोग आ गए तो डर के मारे अपने घर के अंदर बंद करके ऊपर चला गया कि क्या होगा अभी। तो फिर धीरे से उसको नीचे बुलाया गया कि डरो मत, आपको कुछ कहेंगे नहीं, आप नीचे आओ। तो फिर चैतन्य महाप्रभु ने उस मुसलमान शासक के साथ में वार्तालाप किया। हाँ तो पहले तो प्रश्न किया कि ये कैसा तुम्हारा धर्म है, जिन माँ का तुम दूध पीते हो गैया का उसी को मारते हो, ये कैसा तुम्हारा धर्म है। और इस प्रकार से फिर उसने हमारी कुरान में कहा है और तुम्हारे शास्त्रों में भी तो बलि होती है, ये सब वार्तालाप हुआ। तो अंत में वो जो काजी है वो संतुष्ट हुआ कि वास्तव में ये जो इस प्रकार की जो सब हमारे यहाँ बताई गई हैं बातें तो ये सब का कोई औचित्य नहीं है, लेकिन आप जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, उसने स्वीकार किया। तो फिर चैतन्य महाप्रभु ने कहा ठीक है लेकिन आप इतने डरे हुए क्यों हो। तो उसने बताया कि मैंने ये आपका संकीर्तन तो रुकवा दिया लेकिन रात को सपने में एक बहुत ही भयानक व्यक्ति मेरे सपने में आया, इस प्रकार से उसके बड़े बड़े दांत थे, हाथ थे, और मेरी छाती पर चढ़ के बैठ गया और उसने मुझे बताया कि यदि ये तुम हरि नाम रोकोगे तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। तो मैं बहुत डर गया, इसलिए मैं ये कभी आपका हरि नाम रोकूंगा नहीं। और उससे काजी ने ऐलान कराया कि इस मेरे जो भी एरिया है इसमें चाहे मुसलमान हो चाहे कोई हिंदू हो, कभी भी कोई भी और मेरे जितने भी वंशज हैं वो कोई भी हरि नाम को रोकेंगे नहीं। और आज भी उस जगह पर जो उनके वंशज हैं वो भगवान के हरि नाम को में आनंद लेते हैं, ऐसे मुसलमान लोग हैं। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने ये हरि नाम संकीर्तन को स्थापित किया। और ये वर्णन शास्त्रों में मिलता है कि ये अवतार जो हैं कलयुग में ये करेंगे। तो श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण है। भगवान श्री कृष्ण जैसे सर्वश्रेष्ठ धर्म हमको सिखाने आते हैं। क्या सिखाने आते हैं? भगवान भगवद्गीता में बताते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच, कि आप सभी मेरी शरण में आइए। तो भगवान श्री कृष्ण हमको शरणागत होना सिखाते हैं। और केवल इतना ही नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण अपनी सभी पार्षदों के साथ आते हैं, नित्य पार्षद, गोपीगण, अर्जुन, नंद महाराज, ये सब भगवान श्री कृष्ण के नित्य पार्षद हैं, उनके साथ आते हैं। और वृंदावन में जो आध्यात्मिक जगत में जो गोलोक है वहां पर भगवान नित्य रूप से जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, अनन्य भक्त हैं, उनके साथ जो प्रतिक्षण लीला विलास करते हैं, आनंद का आस्वादन करते हैं, और उनके जो भक्त हैं वो भगवान की इस प्रकार से अलग अलग प्रकार से सेवा करते हैं, भक्तिमय सेवा करते हैं और आनंदित रहते हैं, उसका प्रस्तुतिकरण श्री कृष्ण आकर के करते हैं। उसी प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान एक भक्त के रूप में आकर के हम सभी को हाथ पकड़ करके कैसे भक्ति करनी है, कैसे हम भगवत धाम जा सकते हैं, ऐसा हमको हाथ पकड़ कर ले जाने के लिए श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में भक्त के रूप में आते हैं। जैसे कोई अगर विद्यार्थी है बहुत मूर्ख होता है, समझता नहीं आसानी से, शिक्षक सिखा रहा है आ ई कैसे लिखना है, वो लिख नहीं पा रहा है, तो शिक्षक उसका हाथ अपने हाथ में पकड़ करके उसको लिखना सिखाता है। तो उसी प्रकार से कलयुग के अंदर हम सभी की ऐसी स्थिति है, मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य ही उपाद्रता, भागवत में जिस प्रकार से वर्णन है कलयुग का, कलिर दोष निधे राजन, ये दोषों का सागर है और इसमें सभी मंद दुर्भाग्यशाली हैं, किसी की आध्यात्मिक प्रगति करने में कोई रुचि नहीं है और बहुत सारे भ्रांत विचार से प्रभावित रहते हैं और मन हमेशा से उद्विग्न रहते हैं, ये लक्षण बताए गए हैं भागवतम में कलयुग के। तो ऐसे इस कलयुग में भगवान के जो संदेश है, भगवत गीता को भी समझने की शक्ति हमारे अंदर नहीं है, शरणागत होने का भी हमारे अंदर ना तो इच्छा है, ना तो समझ है, ना तो उस प्रकार के हमें समझाने वाले भी हैं। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान श्री कृष्ण ये शरणागति कैसे करनी है खुद करके सिखाते हैं। तो इस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु महावदान्याय अवतार उनको कहा गया है। तो क्या सिखाते हैं चैतन्य महाप्रभु? तो उनकी शिक्षाएं हैं, उसका सार इस प्रकार से है। एक तो है वो बताते हैं कि प्रेम पुमार्थ महान, मनुष्य जीवन में जो प्रापणीय गंतव्य है उसमें सर्वश्रेष्ठ गंतव्य है कृष्ण प्रेम। सामान्य रूप से शास्त्रों में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चार लक्ष्य बताए गए हैं मनुष्यों के लिए। सामान्य धर्म पालन करना, उससे अर्थ की प्राप्ति करना, अर्थ की प्राप्ति होने पर भौतिक इच्छाओं को पूर्ण करना, और जब भौतिक इच्छाओं को पूर्ण करके हम हताश हो जाएं, तब उसके बाद मोक्ष की कामना करना, यानी जन्म मृत्यु के चक्र से हमेशा के लिए निकल जाने की इच्छा करना और उसके लिए प्रयास करना। ये चार पुरुषार्थ सामान्य रूप से शास्त्रों के द्वारा स्थापित हैं और सब लोग मानते हैं, लेकिन शास्त्रों में जो गुह्य अर्थ है जिसमें कृष्ण प्रेम ये परम पुरुषार्थ है, ये सामान्य लोग नहीं जान पाते हैं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु के अवतरण का एक प्रमुख कारण, विशेष रूप से कलयुग के हम सभी दुर्भाग्यशाली जीवों को ये हमारा परम लक्ष्य कृष्ण प्रेम है, ये बताने आते हैं। तो आप देखिए, अगर आप वर्तमान समय को भी लें तो हम लोग क्या करते हैं, सामान्य लोग, हम सब लोग किस चीज में अपना जीवन बिता रहे हैं। जन्म होता है, बच्चे हैं, खेलते हैं, युवक होते हैं तो युवक युवती एक दूसरे से आकर्षित होते हैं, फिर विवाह होता है, संतान होती हैं, कुछ जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, कुछ पैसा कमाते हैं, घर चलाने की चिंता, घर का मेंटेनेंस करते हैं, फिर धीरे धीरे इसी प्रकार से वृद्ध हो जाते हैं, कुछ नाम कमाने के लिए कुछ धार्मिक क्रियाएं करते हैं और फिर एक दिन इसी प्रकार से मर जाते हैं, खत्म। ये सामान्य हम सभी का जीवन की एक कहानी है। इसलिए शास्त्र में कहा गया है, कर्माणि आरंभमाणानाम दुखहत्यै सुखानि च सुखाय च पश्येत पाक विपर्यासम, कि हम सभी को देखना चाहिए कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं सुख को बढ़ाने के लिए, इंद्रिय सुख को बढ़ाने के लिए, और जो अपने आप से इस प्रकृति के द्वारा हमें भौतिक दुख मिलता है उसको खत्म करने के लिए अलग अलग प्रकार से हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन पश्येत पाक विपर्यासम, परिणाम उल्टा हो रहा है, कोई सुखी नहीं है, सब दुखी हैं। ये जान करके मिथुनी चरिणाम निणाम, जितने भी ये स्त्री पुरुष साथ में रह करके, जब व्यक्ति थोड़ा युवक बनता है तो फिर विवाह करता है स्त्री पुरुष, किस लिए, अब हम दोनों साथ में रह करके अपने इस पूरे जीवन को बहुत सुखमय बनाएंगे, इस आशा से सामान्य सभी लोग विवाह करते हैं। और आजकल हम और ज्यादा एडवांस हो गए हैं तो आजकल विवाह भी नहीं करते हैं, ऐसे ही साथ में रहते हैं जैसे कुत्ते बिल्ली रहते हैं। तो लेकिन चेष्टा यही है कि कैसे हम सब मिलकर के, दोनों मिलकर के अलग अलग प्रयास करके अपने सुख को खूब बढ़ाएंगे और जितना भी दुख मिलता है उसको खत्म कर देंगे और इस प्रकार से हम जीवन में परम सुख प्राप्त करेंगे। लेकिन शास्त्र बताते हैं होता इसका उल्टा है, क्योंकि अन्यत्र बताया गया है, को वा अर्थ सुखयत्येनम कामो वा मृत्युरंतिके आघातम नियमानस्य वध्य सेवन तुष्टिदः। उदाहरण दिया है जिस प्रकार से एक व्यक्ति जिसको मृत्युदंड मिल गया है, अभी उसको मारने के लिए ले जाया जा रहा है, उस व्यक्ति से अंत में पूछते हैं कि तुम्हारी अंतिम ख्वाहिश क्या है, अभी तुम मरने वाले हो, अभी अंत में जो भी तुम्हारी इच्छा है वो पूर्ण करने की कोशिश की जाएगी, तुम्हारी क्या ख्वाहिश। तो आप सोचिए, अगर किसी व्यक्ति को इस प्रकार से मृत्युदंड हो और उसको अंत में अंतिम ख्वाहिश पूछी जाए, तो क्या वो ख्वाहिश को पूरा करके वो क्या कभी सुखी हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। उसको तो इतना बड़ा संताप आगे दिख रहा है, मृत्यु, तो कैसे वो कभी भी किसी भी चीज में सुख प्राप्त कर सकता है? संसार की कोई भी सर्वश्रेष्ठ चीज भी आप भौतिक सुख की उसको प्रदान कर दीजिए, वो व्यक्ति जिसको पता है कि आप, तुमको मृत्युदंड हो गया है, तुमको कल मरना है, आज आप उसको संसार की कोई भी चीज दे दीजिए, वो कभी हृदय में उसको भोग नहीं कर सकता। उसी प्रकार से शास्त्र कहते हैं हम सबकी यही स्थिति है, हम सबको मृत्युदंड है, फिर भी हम लोग इस भौतिक जगत का भोग करने का प्रयास कर रहे हैं, तो कैसे सुखी होंगे, क्योंकि हम सबको पता है कल मरना है, कल नहीं तो परसों, एक साल बाद, दो साल बाद, कभी भी पता नहीं, आज भी कभी भी। तो ऐसी स्थिति में कैसे हम कभी भी इस भौतिक जगत के किसी भी चीज को प्राप्त करके सुखी हो सकते हैं, यह असंभव है। तो इसीलिए भगवद गीता में आचार्यों के माध्यम से भगवान स्वयं आकर के हम सभी को जगाते हैं। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरम निबोधता, हम क्यों ये माया की गोद में सो रहे हैं। दुराशया ये बहिरर्थ मानिना, हम एक ऐसी आशा लगाए बैठे हैं जो कहीं पूरी नहीं होने वाली। हम सभी सुख चाहते हैं, उसमें गलती नहीं है। सुखी होना वो आत्मा का स्वाभाविक गुण है, आनंदमय अभ्यासात भगवान का गुण है, और क्योंकि हम भगवान के अंश हैं इसलिए हमारा भी वो गुण है। लेकिन हम जिस प्रकार से आनंद ढूंढ रहे हैं भौतिक सुखों में, इंद्रिय भोग में, वहां आनंद नहीं है। यही संस्पर्शजा भोगा दुख यो ने एवते आद्यंतवंत कौनते नते शुरमते बुधा। भगवद गीता में भगवान कहते हैं ये सारा का सारा भौतिक सुख तो अनित्य है, अंत में मृत्यु है, वो सबको खत्म कर देगी। ऐसी स्थिति में कैसे इस भौतिक जगत की कोई भी चीज सुख में हो सकती है। ये विवेक हमको देने के लिए, हमको जगाने के लिए चैतन्य महाप्रभु सबसे पहले तो हमको आते हैं। तो क्या है फिर हमारा परम आनंद, कहां है परम आनंद? है हमारा घर परिवार जनों के साथ में रहने में, वो हमारा आनंद नहीं है। क्योंकि घर परिवार के जन छू मंतर हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, और बहुत सारी स्थिति में तो रहते रहते इतना कष्ट हमको देंगे कि हम ही सोचेंगे कब इनसे पाला छूटेगा, ऐसा बहुत होता है। और अंत में अगर बहुत आपको लगाव है तो भी जितना जिससे जितना लगाव होगा वो आपके उतना ही अधिक कष्ट दे के जाएगा जब आपसे अलग होगा, और अलग तो होगा ही निश्चित। अगर आपको अपनी धन संपत्ति से सुख की अभिलाषा है तो शास्त्रों में बताया है और ये कॉमन सेंस है, धन संपत्ति संचय करने में कष्ट है, संचय धन संपत्ति प्राप्त करने में कष्ट है, प्राप्त हो गया तो उसको संचय करने में कष्ट है, और एक दिन तो जाएगी ही जाएगी, डिमोनेटाइजेशन होगा, या तो GST लगेगा या तो कुछ और लगेगा, चोर डकैत आएंगे, वकील, डॉक्टर, और नहीं तो आपके खुर घर के संबंधी एक दिन आपसे वो लेके चले जाएंगे। तो जब जाएगा तो आपको दुख होगा, तो वो भी मूर्खता है। समाज में लोगों का एक बहुत बड़ा सुख का साधन होता है प्रतिष्ठा, मान सम्मान। कितने लोग हमारा मान सम्मान करते हैं, हमारा गुणगान करते हैं। वो गुणगान तब तक करते हैं जब तक उनका कुछ हेतु सिद्ध होता है आपके द्वारा। आप देखिए पॉलिटिशियन होते हैं, अपनी जो पोस्ट में होते हैं तो कितने लोग उनके आगे पीछे घूमते हैं, और जहां इलेक्शन में हारे उनकी फिर क्या गति होती है। गवर्नमेंट ऑफिसर होते हैं जब तक पदवी में रहते हैं बड़ी उनकी सब सल्यूट करते हैं, लेकिन जब रिटायर होते हैं तो उसके बाद उनको चपरासी भी नहीं पूछता है। तो ये प्रतिष्ठा आशा ये भी परम मूर्ख अभिलाषा है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं बड़े अभिमानी होते हैं, चाहते हैं कि सब लोग हमारे पर ही ध्यान दें, माता पिता का 24 घंटे हमारे ऊपर ध्यान रहे, हर चीज हमारे लिए हो, जो हम मांगे वही होना चाहिए, ऐसे बड़े अभिमानी होते हैं। हम सब लोग आयु में बड़े हो गए हैं लेकिन हैं बच्चे ही ज्यादातर, चेतना की दृष्टि से वही खेल खेल रहे हैं, प्लास्टिक की जगह लोहे से और सीमेंट से खेल रहे हैं, वही गुड्डे गुड़िया के संबंध की जगह, गुड्डे गुड़िया का वो संबंध कुछ घंटों तक चलता है तो यहाँ ये शरीर का संबंध कुछ सालों तक चलता है, लेकिन घूम फिर के बात वही है, अनित्य संसार, जीवन अनित्य जानो हसार, ये जीवन अनित्य है, और इसमें नाना विध दुख, बहुत प्रकार के दुख हैं, अनित्य है और बहुत प्रकार के दुख। तो श्री चैतन्य महाप्रभु हम सभी को ये याद दिलाने आए हैं कि आपका जीवन का उद्देश्य है कृष्ण प्रेम। वास्तव में हम शरीर नहीं हैं, हम डॉक्टर इंजीनियर नहीं हैं, हम बिजनेसमैन नहीं हैं, हम इस जगत के वासी नहीं हैं। Somebody's mobile, you wanted to charge something? तो हम इस जगत के वासी नहीं हैं। ये चेतना हमारे में इतनी गहरी घुस गई है कि हम इस जगत के वासी हैं, इस जगत से हमारा नित्य संबंध है, ये शरीर यही हम हैं, शरीर का सुख ही हमारा सुख है। नहीं, हमें इस जगत से कोई लेना देना नहीं, हम शरीर ही नहीं है, तो फिर इस जगत का संबंध हमारे साथ क्या है? कोई नित्य संबंध नहीं। हाँ, ये जगत कृष्ण की एक शक्ति है, इसलिए हम कृष्णदास हैं, और इसलिए जो भी भगवान हमको दिए हैं इस जगत के अंदर, हम यहाँ पर भाई आ गए हैं भगवान को भूल करके, तो जो भी संपत्ति, जो भी कुछ हमारे पास है, उसको भगवान की सेवा में लगा दें, वो वास्तविक संबंध है, क्योंकि हर चीज भगवान की संपत्ति। बाकी हमारे अपने इंद्रिय भोग के लगाना वो मूर्खता है। तो इस जगत से इस प्रकार से हमारा इस संबंध भोग का नहीं है, हम इस जगत के भोगता नहीं है, हम भोगता ही नहीं है, हम कृष्ण सेवक हैं। हमारा वास्तविक आनंद कृष्ण की सेवा करने में है, ना कि कृष्ण से स्वतंत्र होकर के किसी भी चीज का भोग करने में है। ये महत्वपूर्ण शिक्षा देने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु आते हैं। फिर ये जो कृष्ण प्रेम है, इसको किस प्रकार से प्राप्त किया जाए? तो चैतन्य महाप्रभु ने कलयुग के लिए बहुत सुलभ विधि बताई है। बताइए, मतलब शास्त्रों में है, ऐसा नहीं कि चैतन्य महाप्रभु ने कोई ऐसी चीज बताई जो शास्त्रों में नहीं है, लेकिन भगवान या आचार्य आते हैं जो शास्त्रों में अलग अलग समय के लिए जो बातें हैं उसको हमारे सामने उजागर करते हैं, क्योंकि समय के चलते चलते बार बार शास्त्र की शिक्षाएं ढक जाती हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु विशेष रूप से कलयुग के अंदर हरि नाम के द्वारा अपराध रहित होकर के, निरअपराध होकर के भगवान के नाम का उच्चारण करने से हम तुरंत कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। ये सरलतम विधि है और महानतम विधि है कृष्ण प्रेम प्राप्त करने की, जो हमारे सभी के जीवन का लक्ष्य है। कृष्ण प्रेम भगवान के साथ हमारा एक शाश्वत संबंध है, सखा के रूप में, दास के रूप में, सखा के रूप में, या तो वात्सल्य भाव में या माधुर्य भाव में हमारा एक निजी संबंध है। जैसा वर्तमान समय में हमारे परिवारजनों के साथ हमारा एक व्यक्तिगत संबंध होता है, वो संबंध सब भगवान के साथ जो हमारे संबंध है उसी का बिगड़ा हुआ रूप है। हम सभी का भगवान के साथ ऐसा एक बहुत बहुत घनिष्ठ संबंध है। इस भौतिक जगत में तो ऐसा घनिष्ठ संबंध संभव ही नहीं है, क्योंकि हम सब अपूर्ण हैं, वो संबंध अपूर्ण रहते हैं, लेकिन उनकी पूर्णता, उन सभी संबंधों की पूर्णता कृष्ण के साथ हमारे संबंध में है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार से कृष्ण प्रेम भगवान के नामों का अपराध रहित होकर के उच्चारण करने से ये हमारा जो संबंध जो हम अनगिनत समय से भूल गए हैं वो हमारे को आसानी से याद आ जाएगा और उसमें हम दोबारा से स्थित हो जाएंगे, और जिसमें स्थित होने के बाद यहीं पर इसी भौतिक जगत में हम भगवान के साथ अपना संबंध को अनुभव कर पाएंगे। और ये देह त्यागने के बाद फिर कंटिन्यू होगा वही भगवान के साथ हमारा, क्योंकि संबंध शाश्वत है, वो एक बार प्राप्त होने पर फिर वो कभी खत्म नहीं होगा। तो इतना महान अवसर हमारे पास उपलब्ध है। अभी चैतन्य महाप्रभु कुछ समय, केवल 500 वर्ष पूर्व जाके गए हैं, उनका ये आंदोलन अभी भी चल रहा है, और कुछ समय जाने के बाद में शास्त्रों में वर्णन है 10,000 साल चैतन्य महाप्रभु के आने के बाद ये हरिनाम संकीर्तन आंदोलन रहेगा, और उसके बाद कलयुग के घोर लक्षण प्रस्तुत होंगे, और फिर कलयुग के अंत में तो कली अवतार, कल्कि अवतार के रूप में भगवान आएंगे और सबका, लगभग सभी का संहार करेंगे, क्योंकि सभी दुष्ट लोग ही केवल रह जाएंगे। तो ये महान अवसर वर्तमान समय में हम सबके सामने है कि हम चैतन्य महाप्रभु के इस आंदोलन में, जिसमें कि कृष्ण प्रेम उपलब्ध है, अगर हम निरअपराध होकर के नाम लें वो हम सब कर सकते हैं। तो भगवान का नाम लेने में, जैसे मैंने आपसे पहले कहा, उसमें गुण का विचार है, समय कौन व्यक्ति है इसका विचार नहीं है, लेकिन किस चेतना में नाम लिया जाए, किस समझ के साथ लिया जाए, उससे उसके तीन प्रकार के स्तर पे हम भगवान का नाम ले सकते हैं। शुद्ध नाम, नाम की परछाई यानी कि नामाभास, और अपराध युक्त होकर के नाम। तो हम सभी के अंदर, क्योंकि भोग वासनाएं हैं, इसलिए अलग अलग प्रकार की भ्रांत धारणाएं हमारे चेतना में, हमारे मस्तिष्क में घुसी हुई हैं। हम कौन है इसको लेकर के, भगवान कौन है इसको लेकर के, देवी देवता और भगवान की क्या स्थिति है इसको लेकर के, हमारा इस भौतिक जगत के साथ क्या संबंध है, ऐसे सब चीज को लेकर के हमारे अंदर बहुत सारी भ्रांत धारणाएं हैं। जिन भ्रांत धारणाओं के कारण हम नाम अपराध, नाम लेते हैं तो भी अपराध युक्त होकर के लेते हैं, शुद्ध नाम नहीं ले पाते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु हमें आए और सिखाए शुद्ध रूप में नाम लेना, अपनी शिक्षाओं के द्वारा जो उनके अनुयायी षट गोस्वामियों ने ग्रंथों के रूप में जिसको एकत्रित किया, शास्त्रों से उद्धरण लेकर के चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को उन्होंने प्रस्तुत किया, षट गोस्वामियों ने सभी शास्त्रों को, जिसके माध्यम से कैसे हम निरअपराध होकर के भगवान का नाम ले सकते हैं, ये पूरा की पूरी पद्धति बहुत विस्तार से और सरल तरीके से अलग अलग ग्रंथों की रचना करके उन्होंने बताई। जैसे कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने आदेश दिया अपने एक महान गोस्वामी शिष्य रूप गोस्वामी को कि आप ये जो भक्ति का मार्ग है इसके सभी इसकी पद्धति का उल्लेख कीजिए, और उन्होंने भक्ति रसामृत सिंधु पुस्तक में चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं जो शास्त्र के अनुसार अलग अलग उद्धरण देकर के उन्होंने हमें बताई हैं। आदौ गुरुपाद आश्रय, एक आध्यात्मिक गुरु की शरण लेने से प्रारंभ होती है ये विधि। आध्यात्मिक गुरु कौन है, उनके लक्षण क्या हैं, फिर श्रवण, पहले श्रवण विधि क्या है, कीर्तनम क्या है, कैसा श्रवण, किसका श्रवण, ये सब विषय बड़े विस्तार से उन्होंने ये पुस्तकों में संकलित किए हैं। तो ये चैतन्य महाप्रभु का विशेष प्राधान्य हम सभी के लिए है। उन्होंने हमको हमारा गंतव्य सिखाया है कृष्ण प्रेम, और उस गंतव्य पे जाने का ये एक एकमात्र सरल उपाय बताया है, शुद्ध भगवान नाम, और शुद्ध भगवान नाम लेने के लिए क्या पद्धति है उसका मार्ग हमको पूरा बताया है। ये मार्ग हम सभी कलयुग के जीवों के लिए सरल है, संभव है। शास्त्रों में अलग अलग युगों के लिए अलग अलग पद्धतियां हैं आध्यात्मिक प्रगति की, उनसे कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं होता है लेकिन आध्यात्मिक प्रगति होती है। लेकिन वर्तमान समय में तो हमारे पास वो सब पद्धतियां करने के लिए भी क्षमता नहीं है, तपस्या करने की क्षमता नहीं है। अलग अलग शास्त्रों में डिटेल में विधि विधान जो है कर्म मार्ग के अंदर, उनको करने का भी हमारे पास क्षमता नहीं है। तो हमारा उद्धार कैसे होगा फिर कलयुग के जीवों का, ये विचार करते हुए चैतन्य महाप्रभु खुद आकर के हरि नाम के द्वारा कैसे हम सभी का उद्धार संभव है ये बताने आते हैं। इसलिए वो महावदान न्याय अवतार हैं, और इस शुद्ध रूप से महामंत्र भगवान के नाम को लेने से अनर्पित चरिम चिरात करुणयावतीर्ण कलऊ, भगवान चैतन्य महाप्रभु वो स्तर तक हमको ले जाते हैं जिसमें हमारा भगवान के साथ एक व्यक्तिगत संबंध स्थापित होता है। केवल भगवान महान है, भगवान बड़े ऐश्वर्य युक्त हैं, भगवान सबके आदि हैं, ये भी भगवान की जानकारी है, लेकिन ये ऐश्वर्य से युक्त ज्ञान है। इससे भी आगे की स्थिति है जिसमें हम भगवान के साथ व्यक्तिगत संबंध स्थापित कर पाए, सेवा कर पाए, वो स्तर तक हमको ले जाने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु अवतरित होते हैं। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ है, ये चैतन्य महाप्रभु की परंपरा को आगे ले जाने वाला है, और शीला प्रभुपाद, एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जिन्होंने इस संस्था की स्थापना की, वो श्री चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में आने वाले एक महान आचार्य हैं, जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु के संदेश को भारत भूमि के बाहर ले गए। चैतन्य महाप्रभु ने भविष्यवाणी की थी, भारत भूमि ते मनुष्य जन्म होइलो चार, जन्म सार्थक करी करो परोपकार, कि भारत भूमि में जो भी जन्म लें उनका यह कार्य है कि वो सभी जगह भगवान नाम का प्रचार करें। और उन्होंने उद्घोषणा की, पृथ्वी ते आछ जत नगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार होइ मोर नाम। इस पूरी पृथ्वी पर वर्तमान समय में शुद्ध कृष्ण प्रेम, शुद्ध कृष्ण भक्ति का प्रचार होगा। तो श्रील प्रभुपाद के माध्यम से चैतन्य महाप्रभु की कृपा से आज देश विदेश में ये हरिनाम और हरिनाम को शुद्ध रूप में कैसे लिया जाए उसकी शिक्षा और उसकी पद्धति का प्रचार हो रहा है। तो ये जो इस्कॉन भोपाल है, भोपाल वासियों के लिए इस प्रकार से ये एक अमृत प्रदान करने वाला है। बहुत सारी संस्थाएं हैं, बहुत जगह पर कुछ कीर्तन होता है, कुछ आरतियां होती हैं, लेकिन ये जो संस्था है, ये जो मंदिर है, ये चैतन्य महाप्रभु के द्वारा प्रसारित शुद्ध कृष्ण भक्ति को प्रतिपादित करने के लिए है और शुद्ध कृष्ण नाम के माध्यम से कृष्ण प्रेम प्राप्त करने की विधि को प्रसारित करने के लिए है। जाति पाति कोई विचार के बिना, कोई स्त्री है कि कोई पुरुष है, कोई भारतीय है कि कोई अभारतीय है, कोई पढ़ा लिखा है कि पढ़ा हुआ है, कोई गरीब है कि कोई अमीर है, ऐसी किसी भी कंडीशन के बिना सब लोग आमंत्रित हैं चैतन्य महाप्रभु के इस आंदोलन में भाग लेने के लिए। केवल एक ही मूल्य है श्री चैतन्य महाप्रभु के दिए गए मार्ग पर अनुसरण करने के लिए, एक ही मूल्य है, श्रद्धावान जन होए भक्ति अधिकारी। केवल श्रद्धा होनी चाहिए, क्या कि हम कि श्री कृष्ण भगवान हैं, हम तुच्छ जीव हैं और उनके दास हैं, और शास्त्रों के द्वारा महान आचार्यों के माध्यम से जो हमें शिक्षाएं प्राप्त होती हैं उनके माध्यम से यदि हम भगवान को शरणागत होंगे तो हम अपने जीवन को सफल कर सकते हैं, हम भगवत प्रेम कृष्ण सेवा शुद्ध कृष्ण सेवा प्राप्त कर सकते हैं जो हमारे जीवन का परम लक्ष्य है। बस केवल ये श्रद्धा हमारे अंदर आवश्यक है भक्ति में प्रवेश करने के लिए, और फिर भक्तों के संग में चैतन्य महाप्रभु के बताए गए तरीके से श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, बार बार भक्तों के संग में नियमित रूप से भगवान के नाम का श्रवण, भगवान के संदेश का श्रवण, भगवद गीता भागवतम, ये करने से धीरे धीरे श्रद्धा का विकास होता है और उत्तर उत्तर प्रगति करते करते हम कृष्ण प्रेम की स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। तो कृपया करके ये जो आंदोलन है इसको गंभीरता से लीजिए। यदि आप अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हैं, यदि आप अपने जीवन के प्रति गंभीर हैं, यदि आप अपना पूरा जीवन बच्चों की तरह से खेलने में नहीं बिताना चाहते हैं, सेंटिमेंटल इमोशनल भावुक होकर के केवल हाँ हमारी पत्नी बच्चे हमारा घर हमारा परिवार बैंक बैलेंस हाँ ये सब बच्चों का खेल है, यदि आप इससे ऊपर उठ करके गंभीरता से अपने जीवन को लेना चाहते हैं, यदि आप ये समझ रहे हैं मृत्यु सामने खड़ी है, उससे पहले हमें शाश्वत जीवन को प्राप्त करना है, हमारे जो आदि हैं भगवान के साथ संबंध हम जो भूल गए हैं उसको स्थापित करना है, यदि आप अपने जीवन के प्रति गंभीर हैं तो कृपया आप गंभीरता से श्री चैतन्य महाप्रभु के इस आंदोलन में भाग लीजिए। और उसके लिए संपूर्ण मार्गदर्शन श्री प्रभुपाद के द्वारा ये पुस्तकों में दिया गया है जो यहाँ पर प्रदर्शित हैं। तो कृपया नियमित रूप से उन पुस्तकों को पढ़िए, और केवल पुस्तकों को पढ़ने से ही काम नहीं चलेगा, उन पुस्तकों को जो जी रहे हैं ऐसे ये सब भक्त समुदाय के साथ आइए, नियमित रूप से आइए कार्यक्रमों में। ये तो एक फेस्टिवल हम मना रहे हैं आज, लेकिन इसका उद्देश्य की है कि यहां पर ऐसा हर दिन उत्सव होता है, हर दिन सुबह 4:30 बजे से उत्सव प्रारंभ हो जाता है मंगल आरती से, नाचते हैं भक्त लोग भगवान का नाम लेके हृदय से, उत्सव है। केवल ये हम आज ही नहीं नाच रहे हैं, हम तो हर दिन नाचते हैं। तो ये उत्सव भगवान के ये जो पद्धति है बड़ी सरल है और इसमें हर दिन महोत्सव है, कृष्ण प्रसाद सेवन करना है, भगवान का नाम लेना है, भगवान के बारे में सुनना है, कोई कठिन परिश्रम करने के लिए नहीं कहा गया है। बाकी योग संस्थाएं हैं, बहुत सांस को रोक के रखना है, सिर को नीचे रख के पैर पर खड़ा करके खड़ा हो जाना है, बहुत सारी तपस्या है, नहीं यहां पर तपस्या है नाचना है, ये कितनी सुंदर तपस्या है, और थक जाने पर पेट भर के कृष्ण प्रसाद लेना है, लेकिन फिर भी हम लोग नहीं आना चाहते हैं, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। तो कृपया आप सभी भोपाल वासी हमारे साथ जुटिए, अपना जीवन सार्थक कीजिए और इस पूरे भोपाल के अंदर ये कृष्ण प्रेम की जो लहर है, चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन की लहर को हमको लेके आना है, उसमें हम सब लोग साथ में जुटे हैं। हाँ, क्योंकि जो भी अच्छी हमारे बात चीज होती है, सज्जन व्यक्ति उसको बांटना चाहता है। और ये चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन की विशेषता है, बांटने से ही ये बढ़ती है। तो इसलिए ये हमारा आप सभी से अनुरोध है कि ये जो आज चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव दिन है, इससे हम प्रेरणा लें कि हम चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन को गंभीरता से लेंगे और उनके आंदोलन में जुड़ करके और लोगों को भी इस आंदोलन में जोड़ेंगे। हरे कृष्णा। श्री चैतन्य महाप्रभु आविर्भाव तिथि महोत्सव की जय। श्री प्रभुपाद की जय।
हरे कृष्णा। किसी को कोई प्रश्न है?
हरे कृष्णा। ये सत्य है कि महापुरुषों ने बताया है कि आसक्ति के बिना जीवन संभव नहीं है, लेकिन आसक्ति से अनासक्ति की तरफ जाने के लिए विचारों से मुक्त होना काफी आवश्यक है, और वो संभव नहीं हो पाता क्योंकि प्रतिपल मन में काफी विचार आते हैं। तो उनसे मुक्ति पाने के लिए कोई सही मार्ग बताएं, जिससे कि परिवार का भरण पोषण करते हुए अपन।
कृष्ण संसार कर छोड़ी अनाचार, यही चैतन्य महाप्रभु शिक्षा है। परिवार को छोड़ना नहीं है, विचारों खत्म नहीं करना है, अपने इंद्रियों खत्म नहीं करना है, यही भ्रांत धारणा है जिसकी वजह से आप ये समस्या अनुभव कर रहे हैं। आप सही हैं, आसक्ति को हम पूर्ण रूप से कभी नहीं छोड़ सकते हैं, लेकिन आसक्ति के विषय को बदलना है। परिवार जनों के शरीरों में जो अनित्य है, उनमें आसक्त होने की जगह हमें नित्य जो हमारे प्रेम के पात्र हैं श्री कृष्ण, उनमें आसक्त होना है। आसक्ति खत्म नहीं की जा सकती है, केवल उसको गलत जगह से सही जगह ले जाना है। अभी हम इस शरीरों में आ सकते हैं, भोग करने में आ सकते हैं, उसकी जगह हमें आसक्त होना है भगवान की सेवा में। विचारों को बंद नहीं करना है, विचारों को कृष्ण में मोड़ना है, परिवार को कृष्णमय बनाना है, परिवार का पालन पोषण कृष्ण की सेवा के लिए करना है। कृष्णार्थ अखिल चेष्टम, कृष्ण की सेवा के लिए हर चीज को लगाना है। तो फिर छोड़ने की बात ही नहीं रही, केवल उसको हर चीज को अपने भोग की जगह कृष्ण की सेवा में लगाना है, वो आसान है।
धन्यवाद।